अब यह विचार करने की बात है कि बहुत से भाई लोग माता बहना है तो वे एक प्रकार से कोई तो आप जवान लड़को मर जावे वह के लिए चिंता करे और कोई जो आप पति है तो छोटी अवस्था में मर जावे उसके लिए वह चिंता करे और कोई एक प्रकार से समझो कि अपनी अस्थि मर जावे उसके लिए करे और कोई अपने जवाई के लिए कोई भाई के लिए तो सारी संसार समझो महान दुखी रही है। ये दुख अपने आप ही एक प्रकार से अपनो मान लियो वास्तव में तो कोई दुख है नहीं है तो हमारे को दिखाओ भी क्या दुख है समझा। दुख हो तो उसका दर्शन तो कराना चाहिए तो दुख कोई चीज नहीं है वो तो मानने की बात है। जैसे रात्रि के समय स्वप्न के बीच के मान ये हमारा भाई जी हमारा लड़का ये हमारा जवाई जी हमारा पति और उसमें सपने के बीच में कोई मर गया तो वहां तो रोए है। किसी को एक प्रकार से कोई जंगल में चला गया शरीर को काटे है तो चिल्लावे कि सपने की बात मैं कह रहा था तो उसमें एक छोटी सी कहानी हमारे को याद आ गई। हमारी जो कहानी है ना वो एक प्रकार से उसमें शिक्षा बनी रहती। हमने बालकपण में बहुत सी कहानियां सीखी और वो अभी तक हमारे यहाँ ध्यान में है तो मौके अनुसार कह दिया कर कहानी उसका नाम है कि जो वास्तव के बीच के मां हुई हुई घटना नहीं है वो तो कहानी और शास्त्र के प्रमाण में जो आ जाए कि वास्तव में जो ऐतिहासिक चीज है घटना घटी हुए वो कथा तो कथा नहीं है कहानी किंतु कथा से भी उसके बीच में ज्यादा रहस्य हुए मिले। कि एक कहानी है कि एक भाई सूता हुआ था और उसको स्वप्न आया तो स्वप्न में क्या देखता है कि स्वप्न के मां वो एक बड़े घोर जंगल में चला गया जैसे यहां नीलकंठ के रस्ते में जंगल है ऐसे घोर जंगल में चला गया और उस जंगल के बीच के मां बाघ और भालू अपने समझो कि जंगली हाथी और जंगली सुअर ऐसे हिंसक जानवर उसके मां बहुत थे तो एक साथ उस पर टूट पड़े तो टूट पड़े तो कोई तो हाथ पकड़ा उसको खींचता है और कोई पैर को खींचता है वो चिल्लाता है कोई चुटाओ रे हाय रे तो वारे तो वो जहां पर उसका शरीर सूटा हुआ था उस शरीर के पास दो एक आदमी बैठे थे तो एक प्रकार से क्या देखते हैं कि उस शरीर के भीतर के बीच में ये होने लगा तो देखा भी ये ए करता है इसकी छाती पर कहीं हाथ तो नहीं आ गया तो देखा तो छाती पर हाथ आ गया तो उस छाती पर से हाथ हटाया और उसको बोला भी इसको कोई भय हो रहा बड़ा दुखी है इस वक्त के मां इसकी ऊपर की आकृति देखने से मालूम होता है कि ये बड़ा दुखी है तो उसको जगा दिया जगाना तो बैठा हो गया। उसने पूछा भी मैं सो रहा था आपने क्यों जगाया बोला हम लोगों ने इसलिए जगाया कि आपकी छाती पर हाथ आ गया था और आप इस तरह से बुलाए कर रहे थे तो हम ये अनुमान किया कि आपको कोई बड़ा कलेश हो रहा है तो भी इसको जगा दो कलेश दूर हो जा तो बोलो ठीक है अच्छा किया बात यही थी। बोले क्या था बोले मुझको एक स्वप्न आया स्वप्न के बीच में घोर जंगल में चला गया और वहां सिंह और बाघ आकर के मुझको खींचने टालने लगे और कोई हाथ कोई पैर को तो उस जंगल में मैं चिल्लाता आप लोगों ने दिखा लिया अच्छा किया बोले अब वो बाघ भालू और वे शंखा बोले था ही नहीं वो तो मैंने कल्पना कर ली वो तो स्वप्न था स्वप्न वास्तव में तो आया था वो बोले आपका कहीं घाव हुआ पैर के हाथ के वो काट काट खा गया ना आपका हाथ काटा किसी ने पैर काटा घाव तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल जरा भी एक समझो कि एक भी दांत नहीं मिले और वहां उसके हाथ पर चूर चूर खा गए स्वप्न के बीच के वहां। तो स्वप्न के बीच के मां जो घटना होती है वो प्रत्यक्ष की माप की दिखती है, उस वक्त में ये बात नहीं दिखती कि ये स्वप्न है। तो इस समय के बीच के मां जो बातें हमको प्रत्यक्ष दिख रही है, शायद ये भी कोई स्वप्न हो, क्या पता है। क्योंकि तो हम देखते हैं कि हम पहले एक काल में रात्रि के मां उसको प्रत्यक्ष देखते हैं एकदम, उस वक्त हमको स्वप्न ही नहीं था, फिर इस शरीर के मां आते हैं तब ये मालूम होता है कि वो स्वप्न था। तो वास्तु के बीच के मां ऐसी घटना हो जाती है। तो इस समय के बीच के मां किसी का कोई घर का मर गया या किसी का धन नष्ट हो गया, अरे ये तो सोचो इसके पहले तुम कहां थे पता है, बोले कुछ पता नहीं। और वहां तुम्हारा कोई भाई या पति या पुत्र या कोई जुआई था उसका ख्याल है, बोले कुछ नहीं ख्याल। तुम कितने कुटुंब को छोड़कर आए हो ये याद है, बोले कुछ नहीं। और रुपये छोड़कर आए हो, कोई मकान छोड़कर आए, बोले कुछ भी ख्याल नहीं। तो यहां से जाने के बाद में यहां का ये सब ख्याल रहेगा, बोले अनुमान तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि पहले का नहीं है तो ये भी आगे कहां जाकर रहेगा। और संसार में जितने मनुष्य हैं किसी को भी याद नहीं, तो हम फिर से भी मनुष्य बने तो ये सब बात हमारे याद रहने की कोई संभावना नहीं। तो संभावना नहीं तो फिर थोड़े काल के लिए तुम अपने को व्यक्ति मान करके क्यों हंसो शोक करते हो। अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी वार्ता अव्यक्त निर्णान तत्र का परिदेवना। भगवान ने गीता की दूसरी जाके 28 के श्लोक में एकदम साफ बता दिया कि ये सारे जो भूत प्राणी है सो निराकार से सृष्टि की आदि के मां और देह की उत्पत्ति के पहले और देह के विनाश के बाद भी इसका स्वरूप निराकार है। तो बीच के मां जो देह के साथ में संबंध हो गया तो इसके विनाश में शोक कौन बात का है। अशोचानंद सोचस्तम प्रज्ञा बाधम सवास से गताश्रून गताश्रूस्ते नानु सोतम दिपंडिता। अर्जुन जो शोक करने के लायक नहीं है उनके लिए तू शोक करता है और वचन पंडितों का सा कहता है, किंतु तू पंडित नहीं है। क्यों जो पंडित माने ज्ञानी, ज्ञानी जो होते हैं वे जिनके शरीर चले गए उनके लिए शोक नहीं करते और जिनके शरीर नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्योंकि जो चले गए वे तो लौट कर वापिस आते नहीं, चाहे सिर पटको सिर फोड़ लो, चाहे अपने प्राणों का नाश कर लो, आत्मा का घात कर लो, सब घर के बैठ कर रोने लग जाओ, वो तो प्राणी वापिस आता ही नहीं। तो जो चले गए उनके लिए शोक करना महान मूर्खता है। प्रत्यक्ष के वहां देखो यदि शोक करने से वो वापिस आवे तो हम आपके 500 आदमी शोक करने के वास्ते जुटा देवे, 100 आदमी आपके साथ में चिंता करे रोने लग जा, यदि वो वापिस आ जाए रास्ता मिल जाए हमको, तो फिर जितने गए हम सबको वापिस बुलावे चे को, क्योंकि 100 आदमी टोली बांध करके के रोने सब आई नहीं सके। रुपया खर्च करने से यदि आवे और किसी भाई पा रुपया न हो तो उसके लिए चंदा कर करके भी एक प्रकार से जुटाया जा। और यदि किसी की सुपारिश चलती हो कि अमुक आदमी सुपारिश कर रहे हैं तो वो वापिस आ जाए मरे हुआ आदमी, तो जाकर के किसी की सुपारिश भी जाए पर आता ही नहीं। तो उसके लिए शोक करना व्यर्थ, व्यर्थ ही नहीं अपने शरीर का नाश करना है और चिंता कर करके मरना है। एक तो गया फिर दूसरे की ओर तैयारी हुए, तो इस बात से कभी न तो शोक करना न रोना न चिंता करना। ये संसार का मामला कैसा है कि जैसे हम लोग सब इकट्ठे हुए यहां पर और अपने अपने स्थान को फिर सो विजा हो रहे हैं, आखिर के जिसके मां सब जितने आए सब चले जाएंगे। तो संयोग जो होता है वो वियोग को लेकर होता है। तो अपने कुटुंब के साथ में जिनका संयोग है उनका भी वियोग होने वाला है। उपाय करो तो उनका करो, जो नहीं मरे हैं फिर वो भी मरने वाले हैं और बचेंगे नहीं। जितने हम यहाँ बैठे हैं सबको मरना होगा, एक दिन मरना होगा। हम दिन नहीं बदला सकते कब मरना होगा, दो वर्ष रहे, पांच वर्ष रहे, किसी को सात वर्ष रहे, ये तुम नहीं कह सकते, किंतु मरना अवश्य होगा, इसमें कोई शंका नहीं। और जितने आपके कुटुंब के लोग हैं अभी मौजूद, उनको भी ये तो मरना होगा। तो यह जो मृत्यु है यह तो सबका ग्रास कर जाती है, कोई भी नहीं बचता, तो हम उसके लिए क्या शोक करें। हमारे जो और बचे हुए आदमी उनका तो प्रबंध करो। एकदम मृत्यु ने चैलेंज दे दिया है, काल ने झुंडी पिटवा दी है कि तुम्हारे घर में जितने सब मरेंगे और तुम भी मरोगे, अब करना उपाय तो करो। अरे तुम जो चले गए क्या शो करते हैं, हम कहते हैं बचे उनको तो बचाओ, अरे तो मरना ही है, तो इसके लिए शोक नहीं बन सकता, शरीर के लिए भी शोक नहीं बन सकता और आत्मा के लिए भी। ये उपदेश जो है तुलसी कृत रामायण के किष्किंधा कांड के वहां भगवान श्री राम ने तारा को दिया है, जिसमें बाली मर गया तो तारा एक प्रकार से बाली के लिए विलाप कर रही है, रो रही है, असल जो सिर पीट रही है, नाना प्रकार का विलाप ऐसो कर रही है। ये देख करके भगवान को दया आ गई, तो भगवान तारा को उपदेश देते हैं, क्षिति जय पावक गगन समीरा, पंचरातीत यह अगम शरीरा, प्रगट सोतन तव आगे सो, तुम कहीं लगी रोआ। भगवान राम कहते हैं कि हे तारे, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो पांच भूत है, उस पांच भूतों का रचा हुआ ये तेरे पति का जो शरीर, अधम शरीर जो कि एक प्रकार से तुम्हारे सन्मुख पड़ा है, यदि इसके लिए रो तो इसको अपने घर में रखो, अपने बालने की जलाने की और क्या जरूरत है, ये तो अभी कहीं गया नहीं, अपने पास में पड़ा है। और यदि तुम आत्मा के लिए रो तो आत्मा नित्य है, न हन्नते हनुमाने शरीरे, जो शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं है, तो आत्मा तो नित्य वस्तु है, इस वास्ते आत्मा के लिए भी शोक नहीं बनता, उसका नाश होता ही नहीं तो उसके लिए शोक क्या बने। और शरीर के लिए भी एक प्रकार से आप चिंता करना नहीं बनता, यदि कहो कि शरीर के साथ के बीच के वहां आत्मा का जो संयोग है और वो शरीर और आत्मा का वियोग हो जाता है, उसका ही मुझको दुख है, मुझे उसका तो दुख करना नहीं, आनंद मानना चाहिए। क्यों कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वाणि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संज्ञाति नवानि देही, भगवान गीता के वहां इसका उपदेश देते हैं दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में। इसका अर्थ यह है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, और नवानी गृणाति नरो पराणी। नर माने मनुष्य जिस प्रकार से थी पुराने वस्त्रों को छोड़ करके और दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। तो इसमें शोक कौन बात का है। देहिनो सुन यथा देहे तोमारंग यौनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुज्जति। जिससे से थी इस शरीर के बीच के मां समझो कि बालक अवस्था युवा अवस्था और वृद्धावस्था होती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय के मां जो ज्ञानी है धीर वो कभी मोहित नहीं होते, मूर्ख लोग इसके बीच के वहां मोहित होकर के रोया करते हैं। तो अपने ये बात समझ लीजिए गीता की रामायण की, फिर वो चिंता शोक उसके पास में नहीं आते। फिर विचार करना चाहिए कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर के यदि आपको नए वस्त्र मिले तो क्या आप चिंता करते हो। तो बोलो ठीक है, किंतु एक प्रकार से थी जिन्हान यथा भी आये नमानी गृणाति नरो पराणी। मानो ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे। सन्मुख में क्या है कि दोनों दल की सेना है और उस सेना के बीच के मां अपने भाई बेटे ताऊ चाचे मामे ये सब उसके मां मौजूद है। उनको देख करके अर्जुन को मोह हो गया कि भाई ये तो हमारा सारा कुटुंब खत्म होता है। तब उसने चिंता की भाई मैं ऐसा काम कैसे करूं। भगवान कहते हैं वाह, जो शोक करने के लायक नहीं उनके लिए तू शोक करता है। अरे तू तो ध्यान तो दे, ये तो कपड़े बदलने के समान है। तो अर्जुन का ये प्रश्न होता है यहाँ कि कपड़े बदलने के समान कैसे। कपड़ा पुराने कपड़ों को पहनते हैं, पुराने कपड़ों को निकालते हैं तभी प्रसन्नता होती है और नए कपड़ों को पहनते हैं तभी प्रसन्नता होती है। और इसमें पुराने शरीरों को छोड़ते हैं तभी दुख होता है और नए शरीरों को धारण करते हैं तभी दुख होता है। तो उसके समान कैसे है। मतलब देखो थोड़ा गंभीरता से विचार करती माँ जो है एक बालक को दो कपड़ा पहना दिया, समझो कि आपने जैकेट पहना दी, ऊपर कोट पहना दिया, चोला पहना दिया। अब उसे बालक के वे कपड़े मैले हो गए, उसमें दुर्गंध आने लगी, बालक के रहेंगे तो वो बीमार हो जाएगा। तो माँ उस कपड़ों को खोल करके के फिर आस-पास से उस बालक के हाथों से हाथ ऊपर न कर करके और मां से निकालती। अरे बालक रोता है मानो कोई सूढ़ी पर चढ़ा दिया। फिर दूसरा कपड़ा निकालते है माँ तो निकालती है, वो रोता रहता है। फिर दो कपड़े नए लाती है माँ, एक प्रकार से पहले उसके गले में डालती, फिर हाथ लंबा करके हाथ में डालती इस प्रकार से। और वो रोता रहता है, माँ परवाह नहीं करती और पढ़ाई देती और पढ़ाने के बाद पुचकारती है, हृदय गल जाती है ना बेटा मैं तेरा मैला कपड़ा निकाला है। पर बालक तो रोता है क्योंकि बालक जो उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए जो आदमी एक प्रकार से रोता है उसको ज्ञान नहीं। यहाँ माता कौन है परमात्मा और वस्त्र क्या है कि नाना प्रकार की योनि। तो इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर के बीच के मां जो जाना है ये कपड़े का बदलना है। तो तुम चाहे रो, मां तो कपड़ा बदलेगी और बदलेगी तुम्हारे हिस्से लिए। अब दूसरी बात आई कि वासन की, कहने पुराने कपड़ों को, तो पुराने कपड़े हो तो नए बदलने चाहिए, नयों को फिर क्या बदलना। नए क्या, ये भीष्म द्रोणिता जी के पुराने समझो पुराने हो गए, बुढ़े हो गए, इनको इकट्ठा करके मारने की तजवीज करो तो ठीक है। और इसके भीतर में जो जवान ये लड़के हैं हमारी तरफ के अभिमन्यु आदि सब द्रौपदी के पुत्र आदि सब जवान जवान लड़के हैं और उनके भी यहाँ दुर्योधन के भी पुत्र लक्ष्मण आदि और लक्ष्मण के भी पुत्र आदि दुर्योधन के पोते आदि जिसके मौजूद हैं। तो इसलिए एक प्रकार से आपने जवानों को तो छोड़ दो तुरे बोला तुम नहीं जान, ये सब मरे हुए थे, तुमको जवान दिखते हैं किंतु मुझको दिखते हैं नीचे आयु समाप्त हो गई। अरे कोई कपड़े की तो आयु होती है 6 महीना की, कोई की 12 महीना की, कोई कपड़ा 5 वर्ष भी रहता है, कोई 20 वर्ष तक भी रहता है, तो सब कपड़ों की समान आयु थोड़ी होती है। धोबी कैसे कपड़े आते हैं तो दूसरों को नए दिखते, बोले वाह चमचम चमक रहे, खूब नए हैं, पर कपड़ों का जो मालिक है ना उसको तो मालूम है कि ये गिरे चीरे हैं खत्म हो गए, ऊपर के ऊपर से दिखते चमचमाते भीतर में तुम नहीं। तो भगवान तो इस बात को जानते हैं, भगवान ही मालिक है कि भी ये कपड़ों में कुछ दम नहीं है, बदलना ही चाहिए। तो इसलिए जिनकी आयु समाप्त हो गई वो ही पुराण है। तो ये ज्ञान है भगवान को, हम लोगों को तो ज्ञान नहीं कि किसका अपने चोला पुराण हो गया। मालिक को तो सब मालूम है, तो ठीक है ये सब कपड़े पुराने। तो बोले यहां बहु वचन किस लिए दिया, नर जो उसमें एक वचन, देवी में एक वचन, उसमें बहु वचन, कपड़ों के मां बहु वचन। तो कपड़े तो एक साथ में भी मनुष्य 3 बदल लेता है, कि भीतर के बीच में गंजी पहन लिया, उस पर कोट पहन लिया, उस पर वाट कोट पहन लिया, तीन कपड़े भी एक साथ में पहन लेता है। शीतकाल के मन तो पराय 2 कपड़े 3 कपड़े लोग पहनते हैं, किंतु शरीर तो एक ही धारण करता है। बोला तुम समझते नहीं, 3 शरीर है इसलिए बहुवचन गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। ये जो अपना है ये स्थूल शरीर, इसके भीतर में से जो निकल के दूसरे शरीर में जाता है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म जो बनता है कारण से, तो पहले कारण बदलता है, फिर सूक्ष्म बदलता है, उसके बाद में स्थूल बदलता है। तो बोले वाह पहले सूक्ष्म, हाँ बोले पहले सूक्ष्म, यंग यंग वापि स्मरण भावं त्वजत्तंते कलेवरं तं त्वमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरने के समय में ये जिस जिस भाव को भावता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है, सदा उस भाव से भावित हुआ वह पुरुष है, उसी उसी को प्राप्त। तो भाव क्या कि जैसे एक आदमी का स्वभाव है पहले से ही, तो आस्ते आस्ते स्वभाव बनता है। तो चोरी करता है तो एक प्रकार से वो बिड़ाल वृत्ति वाला, बिल्ली की जैसी वृत्ति वाला है। बिल्ली एक प्रकार से चुपचाप आकर के दही दूध खा जाती है, चोरी उसका स्वभाव ही चोरी का है। तो पहले जन्म के बीच में चोरी का स्वभाव उसका बन गया था, तभी उसको बिल्ली बनाया गया। और जो यहां बहुत भूखा करते हैं ना, ये मरने के बाद कुत्ते होते, उस जैसा उसका स्वभाव होता वैसी योनि मिलती। और जो दम और पाखंड करते हैं ना, वे मर करके बगले होते हैं, उनकी बस वृत्ति पहले ही बन जाती। तो वृत्ति जो है, स्वभाव जो है, वो उसका कारण शरीर, और उसी के अनुसार अंतकाल के वहां स्मृति होती है, और स्मृति के अनुसार उसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है, सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म के अनुसार स्थूल बनता है। जैसे कोई कैमरा लेकर अपना फोटो उतार, दूसरों का फोटो उतारता है, कोई चीज का फोटो उतारता है, तो सामने जैसा दृश्य होता है वैसा ही उसके मां फोटो आ जाता है। तो ये शरीर है कैमरा है, और इसके भीतर के मां जो अंतःकरण है मन बुद्धि, वो कैमरे का आईना है, और उसमें जो आकर के संकल्प होता है ना, वो अपने दृश्य का फोटो है। मन के मां मरने के वक्त में कुत्ता याद आ गया, तो मानसी कुत्ता तो बन गया, और स्थूल कुत्ता आगे जाकर बनेगा। मनुष्य याद आ गया तो मानसी मनुष्य तो बन गया, अब मनुष्य का स्थूल शरीर आगे फिर मिलेगा। तो मरने के वक्त के मां जैसा मन के मां संकल्प आ जाता है, वो वैसा ही उसमें छप जाता है और उसी के अनुसार भावी है तो शरीर उसको मिलता है। तो इसलिए तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। इस वास्ते बहुवचन लिया तो वासांसी जीर्णानि और यथा विहाय और नवानि गृणाति नरो पराणि। तो यहाँ नर दिया और वहां सुदेह। तो बोलो दोनों जगह ही देह दे देते एक ही सब से काम चल जाता। दृष्टांत और दाष्टांत के बीच वहां आपने दो क्यों बोलो प्रयोजन है। यहां यदि देह दे दिया जावे तो सब जीव तो कपड़े नहीं बदलते, कपड़े तो मनुष्य बदलते। तो नर के साथ ही प्राणी वस्त्रों के बदलने की बात है न कि जीव मात्र। यहां से यहां नर देना उचित है तो बोले वहां भी नर ही देते, वहां फिर दे क्यों दिया। बोले इसलिए दिया कि शरीर तो सभी बदलते हैं, यान मात्र प्राणियों का शरीर है तो बदला जाता है। इस वास्ते देहाभिमानी देह ही देह में रहने वाला जीव बोले ठीक है। और शरीर के संबंध से जो है वो जिसको जीव कहते हैं वो इसमें से निकल करके दूसरे शरीर में जाता है। तो ये जो आपने कपड़ों का दृष्टांत दे करके और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो बात बताई गई वहां तो एक प्रकार से जीव को लेकर के शरीरधारी को लेकर के कहा अज्ञानी जीवों को। और वहां शुद्ध आत्मा का वर्णन है कि आत्मा का ऐसा स्वरूप। तो इस प्रकार से थी एक एक जो शब्द है उस पर विचार करना चाहिए तब उसके वहां गीता के वहां आनंद आ। तो ये सब है समझो कि बात जो मैं आपको कही और उस दिन गीता की चौथी अध्याय के समझो कि सारा के श्लोक जो व्याख्या करी थी कर्मण्य कर्म ये प्रसिद्ध जय कर्म के कर्म ये सब बुद्धिमान करूंगे वो भी जटिल व्याख्या। तो ये सब व्याख्या बड़े विस्तार से करी थी। तो वो विस्तार आपको देखना होगा तो ये सत्यवेश्वरी जो टीका है इसके वहां इसी प्रकार से पढ़ा करके बतलाया गया। इतना विस्तार नहीं तो रुपये हम बारहना समझो कितना मिल ही जाएगा। उसमें देखने से एक एक शब्द के ऊपर आपको मालूम होगा कि ये क्यों का धर्म क्षेत्र का क्या मतलब, कुरुक्षेत्र का क्या मतलब। सब उनके मां खुल जाता है जो जितने कठिन शब्द है। चार जिसमें अठारह जैसे हम लोग रेल में चलते हैं और जिसकी स्टेशन आती है वो अपनी स्टेशन पर उतर जाता है। तो अपने डिब्बे में एक आदमी कम हो गया तो हम आराम से रहते हैं। बोले अच्छा तो अपने कुत्ते के वहां समझो 20-30 आदमी हो गए और एक आदमी की भीड़ मिट गया तो हमको तो आने नहीं लगना चाहिए कि बनाना चाहिए। अपने पास में जो घर है रुपये हैं जो कुछ है वो जितने गैर में रहेंगे वही तो भोगेंगे। और वो साथ में रहता है तो वो भी 5-5 मिनट आता। तो अपने उसकी चिंता की तो कोई बात ही नहीं। और ये भी जो हमारा भाव है ऊंचा नहीं है कि एक आदमी उतर गया तो गैर तो आराम भोगे। अपने तो ये कहना चाहिए कि भगवान की लीला हो रही है कोई उतरे तो कोई चले तो घर में कोई पैदा हुआ है तो भी बहुत आनंद की बात भगवान का विधान। अरे कोई मरे तो भी आनंद की बात। लाख रुपया आवे तो आनंद और लाख रुपया सुने चला जा तो आनंद। अपने तो ये भगवान लीला कर रहे हैं अरे उसको देख देख खुश होना चाहिए। अनिच्छा से परिच्छा से कोई भी एक प्रकार से कार्रवाई हुए तो ये समझना चाहिए इसके भगवान का हाथ है, भगवान का आर्डर है, भगवान का हुक्म सब हो रहा है, भगवान का एकदम विधान है। वो उस कोटि के महापुरुष का विधान है तो सबके लिए मंगलमय है, चाहे अपने को प्रतीत हो चाहे न प्रतीत हो। अब देखो कि लड़का मर जाता है तो क्या कहते हैं, वो उसका लड़का उतर गया, कहते लड़का उतर गया, दूसरा कहे तुम्हारा लड़का उतर गया, बोले हाँ, तो उसको ये कहना चाहिए कि भैया उसकी किस नागिन अपनी अपनी शरीर में सभी उतरते, उनकी भी शेष नागिन तो वो भी उतर गया, चिंता कौन बात थी। जब वो आया था उस वक्त के बीच में तो उसकी माता को कितना क्लेश है, वो बेचारी रोती नहीं,